रस सिद्धांत के पुनराख्याता डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी के वर्तमान आलोचकों में दृष्टिकोण की उदारता, अध्ययन की व्यापकता एवं गंभीरता, विचारों की प्रौढ़ता, अभिव्यक्ति की प्रांजलता, मानदंड के औचित्य, दृष्टि की निर्मलता तथा निर्णय की स्पष्टता आदि सभी दृष्टियों से डॉक्टर नगेंद्र ने विवेकशील पाठकों का ध्यान सर्वाधिक आकृष्ट किया है। आज हिंदी आलोचना के क्षेत्र में उनका कृतित्व विरल और विशिष्ट है। काव्य दृष्टि, प्रेरणा और प्रभाव, प्रसार एवं संस्कार। डॉक्टर नगेंद्र ने अंग्रेजी साहित्य के संस्कारों को आत्मसात करके हिंदी साहित्य में प्रवेश किया था, इसलिए साहित्य के संबंध में उनकी धारणाओं का मूल आधार अंग्रेजी साहित्य के कवियों और आलोचकों की मान्यताओं से प्रेरित है। हिंदी की ओर प्रवृत्त होने में उन्हें प्रोफेसर प्रकाश चंद्र गुप्त और बाबू गुलाब राय से प्रेरणा मिली थी। ये दोनों ही विद्वान पाश्चात्य साहित्य की मान्यताओं से सुपरिचित थे, इसीलिए डॉक्टर नगेंद्र का साहित्य सौंदर्य बोध, जो अंग्रेजी रसाचार्यों की छाया में विकसित हुआ था, कुंठित नहीं हुआ। भारतीय साहित्य मनीषियों की ओर आपका ध्यान कुछ बाद में गया। संस्कृत के आचार्यों में भट्ट नायक और अभिनव गुप्त से आप विशेष से प्रभावित हुए। हिंदी में आपको सर्वाधिक प्रभावित करने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इस संबंध में आपने स्वयं कहा है, प्रारंभ में ही आचार्य शुक्ल की प्रभाववश मेरे मन में भारतीय रस सिद्धांत के प्रति गहरी आस्था हो गई। शुक्ल जी का मेरे मन पर विचित्र आतंक और प्रभाव रहा है। मेरे अपने संस्कार शुक्ल जी के संस्कारों से सर्वथा भिन्न थे। मेरा साहित्यिक संस्कार छायावादी युग में हुआ था। शुक्ल जी सुधार युग की विभूति थे। उनके निष्कर्षों को मानने के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था, परंतु उनके प्रौण तर्क और अनिवार्य शैली मेरे ऊपर बुरी तरह हावी हो जाते थे और मैं यह मानने को विवश हो जाता था कि इस व्यक्ति की काव्य दृष्टि चाहे संकुचित हो, लेकिन फिर भी अपनी सीमा में यह महारथी अजेय है। पाश्चात्य आलोचकों में डॉक्टर नगेंद्र ने आई ए रिचर्ड्स और क्रोचे का विशेष प्रभाव ग्रहण किया है, किंतु वे इस सिद्धांत की व्यापक प्रतिष्ठा का आधार मानते हैं। फ्रायड दर्शन के संबंध में उनका कहना है, मैं फ्रायड दर्शन को एकांगी और उसकी आधारभूत अनेक युक्तियों को दुरारूढ़ और अविश्वसनीय मानता हूं। काम जीवन का मुख्य अंग है पर सर्वांग नहीं। ऐसी दशा में मैं फ्रायड के सिद्धांत को जीवन दर्शन के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता हूं? फिर भी फ्रायड को एक बहुत बड़ी मेधा मानता हूं। उसका प्रभाव अत्यंत व्यापक है। रस सिद्धांत में भी फ्रायड का दर्शन साधक है, बाधक नहीं, क्योंकि दोनों ही आनंद के सिद्धांत प्लेजर प्रिंसिपल को लेकर चलते हैं। अंग्रेजी समीक्षकों, भारतीय काव्य चिंतकों, पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों, हिंदी के रीतिकालीन कवियों, आचार्यों एवं आधुनिक आलोचकों तथा अंग्रेजी के रोमांटिक और हिंदी के छायावादी कवियों के समन्वित प्रभाव के आधार पर विकसित डॉक्टर नगेंद्र की काव्य दृष्टि रस, सौंदर्य और आनंद की आत्मनिष्ठ स्थिति को महत्व देती है। इसलिए मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित सौंदर्य को वस्तुनिष्ठ या समाजनिष्ठ मानने वाले प्रगतिवादी दृष्टि से वे अपना सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते। आधुनिक बोध को महत्व देने वाली और अस्तित्ववादी जीवन दर्शन से प्रेरित नई रचना और नई समीक्षा का या रूपात्मक समीक्षा भी डॉक्टर नगेंद्र को ग्राह्य नहीं है। इसका प्रधान कारण यह है कि यह अनविति के सत्य को ही काव्य का सत्य मानकर राग तत्व और विचार तत्व का निषेध करती है। जहां तक भाषिक विश्लेषण का प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र की मान्यता है, संस्कृत काव्य शास्त्र के संप्रदायों, रीति, अलंकार, वक्रोक्ति और ध्वनि आदि में इसका अत्यंत सूक्ष्म विस्तृत सिद्धांत विवेचन मिलता है और टीकाओं में प्रयोग मार्मिक प्रयोग। इस प्रकार डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार नई समीक्षा की अधिकांश मूलवर्ती मान्यताओं की स्थापना उपस्थापना संस्कृत के आचार्य अधिक बुद्धिग्राह्य एवं तर्कसंगत शब्दावली में लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही कर चुके थे। तात्पर्य यह है कि डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद से लेकर नई कविता तक के पूरे काव्य विकास और उसके समानांतर विकसित समीक्षा दृष्टि को देखा परखा है, किंतु वे अपने मूल स्थापनाओं से विचलित नहीं हुए। स्पष्ट है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के मूल्यांकन के लिए जिस व्यापक और निर्मल दृष्टि की आवश्यकता है, डॉक्टर नगेंद्र ने यथासंभव उसका विकास विभिन्न प्रेरणा सूत्रों के संग्रंथन तथा व्यापक अध्ययन से उपलब्ध मूल्य निर्धारक उपादानों के संयोजन के माध्यम से कर लिया है। डॉक्टर नगेंद्र की विशेषता यह है कि वे जिसका प्रभाव ग्रहण करते हैं उनके विचारों को भी ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं करते, वरन अपने विवेक की कसौटी पर परख कर उपयुक्त एवं ग्राह्य को आत्मसात कर लेते हैं और असंगत अग्राह्य तथा अनुचित का तर्कपूर्ण विरोध करते हैं। इस संबंध में उनका कहना है, जो मुझे प्रभावित करते हैं, जिनकी गरिमा मेरे मन को आंदोलित करती है, जिनसे फिर मैं जूझने लगता हूँ, अत्यंत गहन अध्ययन चिंतन और विश्लेषण को तो पहला कदम है। इसके बाद उसके ग्राह्य विचारों का आख्यान, अग्राह्य विचारों का युक्तियुक्त खंडन, असंगतियों में संगति स्थापना, उनकी सीमाओं का विस्तार और समग्रता उनकी परंपराओं का विकास करने की स्प्रिया मेरे मन में बराबर बनी रहती है। इस प्रकार वे अनेक महान परंपरा प्रतिभाओं की बड़ी शक्ति के साथ अपनी छोटी शक्ति को तौलता रहता हूँ। जिस व्यक्ति ने सबसे अधिक प्रभावित किया है उसके साथ शक्ति परीक्षा भी मैंने सबसे अधिक की है। आचार्य शुक्ल इसके प्रमाण है। यही कारण है कि अपने को निरंतर विकसित और संस्कृत करते रहने के बावजूद डॉक्टर नगेंद्र रस सिद्धांत के प्रति अपनी आस्था में अपराजेय रहे हैं। साहित्यिक मान्यताएं। डॉक्टर नगेंद्र ने आलोचक की आस्था निबंध संग्रह में संग्रहित प्रथम 3 निबंधों के अंतर्गत अपनी साहित्यिक मान्यताओं को स्पष्ट किया है। इस संदर्भ में उन्होंने साहित्य संबंधी कई मूलभूत प्रश्नों का समाधान करने की चेष्टा की है। साहित्य का स्वरूप, उसका प्रयोजन, उसमें अंतर्निहित मूल्य, उसके तत्व और उपादान, अनुभूति और अभिव्यक्ति का संबंध, उसमें निहित सत्य की युगबद्धता एवं युगमुक्तता आदि प्रश्नों का समाधान डॉक्टर नगेंद्र ने अत्यंत स्पष्ट और सुलझे हुए रूप में किया है। आप साहित्य एवं संपूर्ण लालित्य वांग्मय को आत्माभिव्यक्ति मानते हैं। आत्मा से आपका तात्पर्य कृतिकार के रागात्मक जीवन और उसके आधार पर निर्मित उसके जीवन दर्शन से है। इसे एक सीमा तक कृतिकार का व्यक्तित्व भी कह सकते हैं। आपकी दृष्टि में व्यक्तित्व का कृति में प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रतिफलन आत्माभिव्यक्ति का ही एक प्रकार है। डॉक्टर नगेंद्र की इस स्थापना के प्रतिपक्ष में जो स्थापना की जाती है वह यह कि सच्चा कलाकार सौंदर्य की सृष्टि करने के लिए ही कला की साधना करता है। अपनी भावनाओं, मान्यताओं अथवा विचारों का प्रचार सच्चे कलाकार का उद्देश्य नहीं होता। इसके उत्तर में डॉक्टर नगेंद्र का कहना है कि सौंदर्य कोई निरपेक्ष वस्तु नहीं है, उसका निर्माण भी तो कलाकार की अपनी भावनाओं और धारणाओं के आधार पर ही होता है। आत्माभिव्यक्ति का सूक्ष्म और उत्कृष्ट रूप सौंदर्य दृष्टि है। सौंदर्य तत्वतः चेतना का पुष्प है, प्रकृति का नहीं। वस्तुतः कला रचना के 2 सिद्धांत हैं, एक आत्माभिव्यक्ति का सिद्धांत और दूसरा निर्मिति या सौंदर्य सृष्टि का सिद्धांत। आत्माभिव्यक्ति का सिद्धांत आत्मतत्व की प्रधानता और वस्तुतत्व की गौणता स्वीकार करता है। निर्मिति का सिद्धांत वस्तुतत्व को प्रमुखता देता है और आत्मतत्व को गौण मानता है। स्वयं डॉक्टर नगेंद्र की दृष्टि में दोनों में तात्विक भेद नहीं है। आत्माभिव्यक्ति के विरोध में अहम के विसर्जन या तटस्थतावाद के सिद्धांत का भी उल्लेख किया जाता है। डॉक्टर नगेंद्र की दृष्टि में अभिव्यक्ति सिद्धांत का इस स्थापना से कोई विरोध नहीं। उसके अनुसार भी व्यक्तिगत राग द्वेष का उद्गार कविता नहीं है। अभिव्यक्ति अर्थात कला सृजन की प्रक्रिया में पढ़कर व्यक्तिगत भाव भी स्व पर की सीमाओं से मुक्त होकर व्यापक चेतना शास्त्रीय शब्दावली में निर्विघ्न प्रतीति का विषय बन जाता है। तटस्थतावाद या अहम के विसर्जन का सिद्धांत भी व्यक्तिगत राग द्वेष से ऊपर उठकर अधिक व्यापक और उन्नत भाव बोध की अभिव्यक्ति पर बल देता है। इस प्रकार डॉक्टर नगेंद्र अपने आत्माभिव्यक्ति के सिद्धांत को ही सर्वथा उचित एवं ग्राह्य मानते हैं। काव्य के प्रयोजन के संबंध में डॉक्टर नगेंद्र का निर्भ्रांत मत है कि इसका प्रयोजन आनंद है। निष्प्रयोजन कर्म तो वही होगा जो सार्थक होगा। प्रयोजन की स्थूलता और सूक्ष्मता की बात अवश्य उठती है। धन, यश, प्रचार, ये सब स्थूल प्रयोजन है। डॉक्टर नगेंद्र काव्य के संदर्भ में इन्हें महत्व नहीं देते, वे आनंद को ही काव्य का आत्यंतिक प्रयोजन स्वीकार करते हैं। आनंद के समानांतर वे लोक कल्याण और चेतना के संस्कार, इन दो प्रयोजनों को भी विचारणीय मानते हैं। आपकी दृष्टि में ये दोनों ही आत्यंतिक प्रयोजन नहीं हो सकते। लोकहित को प्रयोजन मार्गकर चलने वाला साहित्यकार लोक में अपने स्व का विस्तार करके आनंद लाभ ही करता है। वह आत्मा न काम आए लोक कल्याण में अनुरक्त होता है। इसी प्रकार चेतना के परिष्कार की परिणति भी आनंद की अनुभूति में ही होती है। इसीलिए लोक कल्याण और चेतना का परिष्कार आनंद की उपलब्धि में बाधक नहीं होते। इन्हें प्रयोजन के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, किंतु आत्यंतिक प्रयोजन या अंतिम परिणति के रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता। काव्य के तीन तत्वों भाव, कल्पना और बुद्धि में डॉक्टर नगेंद्र भाव को ही प्रमुख मानते हैं। कल्पनागम में शुद्ध अथवा निर्वैयक्तिक भाव का स्वाद ही शास्त्र की मर्यादा में रस कहा जाता है। इसलिए काव्य के आस्वाद का आनंद रसानुभूति का ही आनंद है, यही काव्य का प्रयोजन भी है। इसी के साथ मूल्य का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। स्वयं डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में, काव्य मूल्य का अर्थ है वह गुण या गुण समवाय जिसके द्वारा काव्य की सिद्धि का निर्धारण किया जा सकता है। इस दृष्टि से मूल्य का आधार अंततः प्रयोजन ही सिद्ध होता है। काव्य का प्रयोजन जब रस या आस्वाद है तो इसका मूल्य हुआ आस्वाद्यत्व, जिससे काव्य में रागात्मक आस्वाद्य प्रदान करने की क्षमता जितनी अधिक होगी उतना ही उसका मूल्य होगा। काव्य के संदर्भ में नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों का प्रश्न भी उठाया जाता है। डॉक्टर नगेंद्र इसका महत्व तो स्वीकार करते हैं, किंतु इन्हें मौलिक या आत्यंतिक नहीं मानते। अनुभूति और अभिव्यक्ति के पारस्परिक संबंध के प्रति डॉक्टर नगेंद्र का दृष्टिकोण काफी साफ और सुलझा हुआ है। वे तत्वतः अनुभूति और अभिव्यक्ति को अभिन्न मानते हैं, किंतु विवेचन के लिए विशेषकर व्यावहारिक समीक्षा के लिए दोनों की पृथक सत्ता स्वीकार करते हैं। सापेक्षिक दृष्टि से वे अनुभूति को अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि अनुभूति ही कवित्व का प्राण तत्व है। अनुभूति ही अभिव्यक्ति के सौंदर्य का आधार है। अनुभूति को इंद्रिय ग्राह्य बनाने के लिए कवि बिंब और छंद का आधार लेता है। यूं तो बिंब पांच ज्ञान इंद्रियों चक्षु, श्रोत्र, त्वक, घ्राण और रसना के विषय क्रम से पांच प्रकार के हो सकते हैं, किंतु कविता में मुख्यतः रूप और लय बिंबों को महत्व दिया जाता है। रूप बिंबों की प्रतीति चाक्षुष होती है और लय बिंबों की श्रोत। लय बिंबों को ही छंद कहते हैं। कविता का सौंदर्य दोनों के लिए पर्याप्त है। डॉक्टर नगेंद्र इसे स्वस्थ चिंतन का परिणाम नहीं मानते। वे कहते हैं छंद कविता नहीं है, यह मान्यता प्राय आरंभ से ही रही है। आज इसका रूप उलट कर यह हो गया है कि कविता के लिए छंद की आवश्यकता नहीं है, बिंब मात्र कविता के लिए पर्याप्त है। यह बात यहीं रुक जाती है तब भी ठीक था, पर वह तो और आगे बढ़ गई है। कविता अर्थ भी नहीं, कविता कविता भी नहीं है, कविता अकविता है। ये सब आस्थाएं चिंतन के चमत्कार हैं जो बाल मनोवृत्ति के लोगों को ही आकृष्ट कर सकते हैं। डॉक्टर नगेंद्र रूप विधान प्रबंध, प्रगीत, नाटक, उपन्यास आदि के अर्थ आदि के भेद को मौलिक भेद नहीं मानते। रूप के भेद से काव्य के आस्वाद में कोई मौलिक अंतर नहीं आता। नाटकों में आख्यान तत्व और आख्यानों में नाटकीय तत्व संश्लिष्ट होते हैं। उसी प्रकार प्रबंध काव्यों में मार्मिक स्थल और प्रगीत काव्यों में कथानक संदर्भ की सृष्टि सहज रूप में हो जाती है। काव्य रूप या विधाएं अनुभूति के आस्वाद के भिन्न भिन्न माध्यम हैं। इन माध्यमों से जो भाव का आस्वाद के लिए भिन्न भिन्न माध्यम है, इन माध्यमों से जो भाव का आस्वाद होता है उसकी अंतिम परिणति चेतना विश्रांति या चित्त की समाहिति में ही होती है। इसलिए साहित्य के रूप भेदों में तात्विक दृष्टि से अभेद करना ही युक्ति संगत है। आलोचना को भी डॉक्टर नगेंद्र ललित साहित्य का ही अंग मानते हैं। वे मूलतः आत्माभिव्यक्ति ही मानते हैं। यह निश्चित है कि आलोचक उस कोटि का सर्जक नहीं है जिस कोटि में कवि और कथाकार आते हैं, किंतु सर्जना वह भी करता है। आलोचना की पद्धति वैज्ञानिक नियमों का अनुसरण अवश्य करती है, किंतु आलोचना की आत्मा भाव के मर्म का ही साक्षात्कार करती है। यदि कवि जीवन का पुनः आख्यान करता है तो आलोचक उस आख्यान या निर्मिति को अपने सौंदर्य बोध की परिधि में लाकर नवीन आलोक से मंडित कर देता है। इसीलिए प्राय आलोच्य साहित्य की श्रेष्ठता आलोचना साहित्य को भी महिमामय बना देती है। उपर्युक्त स्थापनाओं के अध्ययन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि डॉक्टर नगेंद्र ने अपने दीर्घकालीन अनुभव और व्यापक अध्ययन के आधार पर साहित्य के संदर्भ में उठने वाली प्रत्येक जिज्ञासा और शंका का सुस्पष्ट समाधान प्राप्त कर लिया है। उनके मन में कहीं किसी प्रकार की द्विधा या हिचक नहीं है, इसीलिए प्रायः प्रत्येक विषय के संबंध में उनकी मान्यताएं निश्चित और दृढ़ प्रतीत होती हैं। आलोचना का मानदंड रस सिद्धांत। डॉक्टर नगेंद्र रस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा रखने वाले आलोचक हैं। आपने रस सिद्धांत का व्यापक और गंभीर अध्ययन किया है। आपके दृष्टि में रस सिद्धांत के आधार पर ही काव्य का उचित मूल्यांकन हो सकता है। डॉक्टर नगेंद्र ने रस को उसकी संपूर्ण व्याप्ति में ग्रहण किया है। आपका कथन है, इस प्रकार रस एक व्यापक शब्द है, वह विभावानुभाव व्यविचारी संयुक्त स्थायी अर्थात परिपाक अवस्था का ही वाचक नहीं है, वरन उसमें काव्य की संपूर्ण भाव संपदा का अंतर्भाव है। वह पारिभाषिक रूप में वह काव्यगत भाव सौंदर्य का पर्याय है। शब्दार्थगत चमत्कार के माध्यम से भाव के आस्वाद का अथवा भाव की भूमिका पर शब्दार्थ के सौंदर्य का आस्वाद ही वस्तुतः रस है। काव्य के अनुचिंतन से प्राप्त रागात्मक अनुभूति के सभी रूप और प्रकार सूक्ष्म और प्रबल, सरस और जटिल, क्षणिक और स्थायी, संवेदन, स्पर्श, चित्त विकार, भाव बिंब, संस्कार, मनोदशा, शील आदि सभी रस की परिधि में आ जाते हैं। रस को यह व्याप्ति देकर डॉक्टर नगेंद्र ने उसे प्राचीन एवं नवीन भारतीय एवं पाश्चात्य सभी काव्याकृतियों के मूल्यांकन की शक्ति प्रदान करने की चेष्टा की है। आचार्य शुक्ल की भांति डॉक्टर नगेंद्र भी रस की स्थिति मनोमय कोश में ही मानते हैं। आपके अनुसार भारतीय आचार्यों में भरत, लुल्लट और शंकुक ने भी रस की सत्ता मनोमय कोश में ही स्वीकार की है। आधुनिक शब्दावली का प्रयोग करते हुए डॉक्टर नगेंद्र यहाँ तक कह जाते हैं कि रस अपने व्यापक अर्थ में मानसिक अनुभूति ही है, या यह कि रस का मुख्य आधार अनुभूति शुद्ध मानवीय अनुभूति ही है। डॉक्टर नगेंद्र इस रस परिधि के विकास और विस्तार की अनंत संभावनाओं के विश्वासी हैं। वे रस के स्वरूप विकास के रसात्मक बोध की व्याख्या को विकसित करना चाहते हैं। रस सिद्धांत में अपने यह दुसाध्य साधन क्रिया भी की है। एक ओर अपने समस्त प्राचीन भारतीय काव्य संप्रदायों, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य को रस के संदर्भ में देखा परखा है, तो दूसरी ओर पाश्चात्य काव्यशास्त्र के सभी प्रमुख वादों, आभिजात्यवाद, स्वच्छंदतावाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, अभिव्यंजनावाद, प्रभाववाद, प्रतीकवाद आदि को रस सिद्धांत की व्याप्ति के भीतर समेट लिया है। आपकी स्थापना है कि रस सिद्धांत एक ऐसा व्यापक सिद्धांत है जिसमें इन वादों का विरोध मिट जाता है, जो सभी के अनुकूल पड़ता है और सभी को अपने स्वरूप में समन्वय कर लेता है। प्राचीन भारतीय काव्य संप्रदाय में अलंकार, रीति और वक्रोक्ति को देहवादी या वस्तुवादी तथा ध्वनि एवं औचित्य को आत्मवादी संप्रदाय कहा जा सकता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार एक प्रकार से ध्वनि और औचित्य दोनों की ही कल्पना रस के आधार पर की गई है। ध्वनिकार ने तो रस ध्वनि को काव्य का श्रेष्ठ रूप मानकर रस की महत्ता स्वीकार की है। औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक ने भी यह कहकर औचित्य रसम सिद्धस्थ स्थिरम काव्यम काव्य से जीवितम रस को ही महत्व दिया है। अलंकार संप्रदाय के अंतर्गत सामान्य और विशेष दो प्रकार के अलंकारों की कल्पना की गई है। सामान्य अलंकार वस्तुतः काव्य के वर्ण विषय ही है। इन अलंकारों का तो रस से प्रत्यक्ष संबंध है ही, विशेष अलंकार भी रस की मर्यादा से बाहर नहीं है। सामान्य अलंकारों को रस की परिधि में विभाव और अनुभाव कहा जा सकता है। इस प्रकार सामान्य अलंकार रस की सीमा से दूर नहीं पड़ते। विशेष अलंकारों में शब्दार्थगत चमत्कार होता है। यह चमत्कार सहृदय से चित्त में भाव संस्कार जगाता है और फिर उसके माध्यम से आनंद की प्रतीति होती है। अतः अलंकार और रस का मधुर संबंध मान्य हो सकता है। रीति संप्रदाय भी गुण को महत्व देने के कारण रस के से संबंध हो जाता है। वामन के अनुसार रस रीति के 20 गुणों में से एक है। उन्होंने दीप्ति रसत्वम कांति अर्थात रस की दीप्ति ही कांति है कहकर सभी रसों का समावेश कांति गुण के भीतर कर लिया है। रस दृष्टि से रीति रस की उपकारक है क्योंकि सुंदर पद रचना भाव लालित्य का पोषण करती है। इस प्रकार रीति और एक दूसरे से संबद्ध है। वक्रोक्ति संप्रदाय ने तो उदारतापूर्वक रस की महिमा को स्वीकार किया है। रस काव्य की वक्रता को समृद्ध करता है। कुंतक ने काव्य में प्रयोजन की चर्चा करते हुए चतुर्वर्ग फलास्वादप्यमति क्रम तद्धिताम काव्यामृत सेरांत शत चमत्कारो विदन्यते अर्थात काव्यविदों के चित्त से काव्य रूपी अमृत रस के द्वारा चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष से जायमान आनंद को भी अतिक्रांत कर चमत्कार का विस्तार किया जाता है कहकर काव्यामृत के रस को विशेष महत्व दिया है। इस प्रकार रस अनुभूति की सीमा के भीतर रहकर अलंकार, रीति, गुण, वक्रता और ध्वनि सभी के साथ पूर्ण सहयोग करता है और सभी का उचित सहयोग प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है कि डॉक्टर नगेंद्र रस का संबंध मानवीय अनुभूति से या मानव की रागात्मक चेतना से जोड़कर उसे कविता मात्र के मूल्यांकन का शाश्वत मानदंड बना दिया है। नई कविता के संदर्भ में विचार करते हुए वे कहते हैं, 40 वर्ष पूर्व छायावाद ने भी रस का विरोध किया था, पर आज रस ही उसका प्राण सर्वस्व है। उसके प्रायः 2 दशक बाद प्रगतिवाद ने उस पर प्रहार किया था, किंतु आज उसका जितना भी अंश अवशिष्ट है वह रस के आधार पर ही जीवित है। इसीलिए नई कविता का भी कल्याण इसी में है कि वह इन रसमय बंधनों को स्वीकार कर ले। डॉक्टर नगेंद्र की इस चेतावनी में रस के आग्रह को अलग कर देने पर भी नई कविता अपनी समस्त बौद्धिक चेतना के बावजूद मानवीय रागात्मकता से विमुख नहीं हो सकती। बुद्धि भी अनुभव की सघनता से ही पुष्ट और परिष्कृत होती है, इसलिए मानवीय रागात्मक अनुभूति और बौद्धिक चेतना परस्पर विरोधी नहीं है। वस्तुतः नया कवि रस की मर्यादा को इसलिए अस्वीकारता है कि वह नए और मौलिक होने के सहज गौरव को खोना नहीं चाहता। रस को लेकर उसके मन में अत्यंत प्राचीन जटिल शास्त्रीय विधान एवं तत्व मीमांसा की परिकल्पना जगती है और वह पंडितों से दूर भागकर आधुनिक जीवन को क्षणिक द्वंद्वात्मक संवेदना को संजोने में व्यस्त हो जाता है। इस संदर्भ में डॉक्टर नामोर सिंह का निम्नलिखित कथन अत्यंत प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं, वस्तुतः संस्कृत काव्य शास्त्र में निरूपित रस सिद्धांत के 2 पक्ष हैं, जिनमें से एक का संबंध अर्थ मीमांसा से है, दूसरे का संबंध तत्व मीमांसा से। वैसे एक तरह से उन दोनों पक्षों को एक ही तत्व मीमांसा की प्रणाली में बांधने का भी प्रयोग किया गया है, किंतु अर्थ मीमांसा की पद्धति बहुत कुछ संप्रदाय निरपेक्ष व्याकरण दर्शन से संबंध होने के कारण प्राचीन काल के समान ही आज भी रचनात्मक विकास की संभावनाओं में युक्त है। इसके विपरीत रस का आस्वाद पक्ष है, जो आनंद मूलक तत्ववाद से संबद्ध होने के कारण एक निश्चित युग की संस्कृति से परिबद्ध है। आज के अनेक नए लेखक जब रस को सर्वथा अप्रासंगिक करार देते हैं, संभवतः इसी आनंद मूलक प्राचीन तत्ववाद के ही कारण। कविता का नया प्रतिमान, पृष्ठ संख्या 50। इसका अर्थ यह है कि यदि डॉक्टर नगेंद्र अर्थ मीमांसा को पद्धति का सहारा लेकर रस के प्रतिमान का समर्थन करते हैं, तो डॉक्टर नामोर सिंह को आपत्ति न होती। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि अन्य नए लेखकों को भी आपत्ति न होती। डॉक्टर नामोर सिंह स्वयं भी पूर्ण आश्वस्त नहीं है। उन्होंने भी अर्थ मीमांसा पद्धति में रचनात्मक विकास की संभावना की ही बात कही है। वास्तविकता यह है कि आज का नया लेखक रस के संबंध में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं, वह शास्त्रीय चिंतन से ही परांगमुख है। रस सिद्धांत के प्रति अखंड विश्वास एवं एकांत निष्ठा के कारण डॉक्टर नगेंद्र आधुनिक काल के चर्चित और स्वीकृत अन्य समीक्षा सिद्धांतों के प्रति अनुदार हो गए। यूं तो उन्होंने नई या रूपात्मक समीक्षा, सौंदर्य शास्त्र, शैली विज्ञान, मिथकीय समीक्षा, साहित्य का समाजशास्त्र आदि सभी सिद्धांतों का अध्ययन किया है, किंतु इन सभी को उन्होंने आंशिक स्वीकृति दी है। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र को आप रस सिद्धांत की परिधि से बाहर नहीं मानते। नई समीक्षा के संबंध में वे कहते हैं, सहृदय समीक्षक जहां अपने संस्कार और प्रतिभिज्ञान के बल पर अनायास ही काव्य के मोती निकाल लाता था, वहां नया समीक्षक इलियट के शब्दों में नींबू और उसकी छूछ को निचोड़ रहा है। शैली विज्ञान के संबंध में उनकी मान्यता है कि इसके मूल तत्वों का भारतीय काव्य शास्त्र के रीति अलंकार तथा वक्रोक्त सिद्धांतों के अंतर्गत किसी न किसी रूप में विवेचन हो चुका है। मिथक का साहित्य के साथ वे अंतरंग संबंध स्वीकार करते हैं, किंतु साहित्य रचना वास्तव में मिथक रचना ही है, यह उन्हें मान्य नहीं है। साहित्य का समाजशास्त्र लिखकर वे अपनी पूर्व निष्ठा से कुछ आगे अवश्य बढ़े हैं। वे कहते हैं, इस प्रक्रिया में मार्क्स के साहित्य दर्शन का साक्षात परिचय प्राप्त कर मुझे बड़ा संतोष हुआ। उनके अनेक सिद्धांतों से मुझे एक विशेष प्रकार का नैतिक बल मिला और चिंतन के एक नए स्तर पर मेरे आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। मुझे अनुभव हुआ कि कला मानव चेतना का प्रतिज्ञान है। कला आरंभ में देश काल परिबद्ध होने पर भी अपनी परिणति में उससे मुक्त हो जाती है। आदि सिद्धांतों में मार्क्स ने प्रत्यक्ष जीवन की दृढ़ भूमिका पर अभिनव गुप्त आदि आत्मवादी दार्शनिकों की प्रतिज्ञाओं का तर्कसम्मत आख्यान किया। कांट, हीगेल और उनके प्रेरणा स्रोत आत्मवादी भारतीय विचारक जहां स्वर्ग से पृथ्वी की ओर आए हैं, वहां मार्क्स ने पृथ्वी से मानव चेतना के ऊर्ध्व शिखरों का आरोहण किया है। इस प्रकार यह निर्विवाद है कि डॉक्टर नगेंद्र निरंतर साहित्य की नई मान्यताओं और समीक्षा के नए सिद्धांतों से जूझते रहे हैं और उस क्रम में उन्होंने अपना परिष्कार किया है, किंतु रस के प्रति उनकी निष्ठा में आज भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आलोचना पद्धति। डॉक्टर नगेंद्र की आलोचना पद्धति को आचार्य शुक्ल की व्याख्यात्मक पद्धति का विकसित रूप कहा जा सकता है। डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी प्रथम कृति सुमित्रानंदन पंत के प्रकाशन के साथ ही हिंदी आलोचना के क्षेत्र में अपना गौरवपूर्ण स्थान बना लिया था। यह उनकी व्यावहारिक आलोचना का स्वरूप स्पष्ट करने वाली महत्वपूर्ण कृति है। इसमें डॉक्टर नगेंद्र ने सबसे पहले छायावाद की सीमा और महत्ता का निर्धारण किया है। इसके बाद कवि पंत के भाव जगत, उनकी विचारधारा, उनकी कला और उन पर पड़ने वाले बाह्य प्रभावों की चर्चा की है। अंत में कवि की प्रत्येक रचना का क्रमबद्ध अध्ययन करने के बाद उपसंहार रूप में उनकी समस्त विशेषताओं का संक्षिप्त रेखांकन कर दिया है। उत्तरार्ध में पंत जी की परवर्ती रचनाओं का नवीन युग बोध के संदर्भ में अध्ययन किया गया है और उनके मानसिक विकास सूत्र की व्याख्या तथा नवीन जीवन दर्शन का विवेचन प्रस्तुत किया गया है। तात्पर्य यह है कि यह डॉक्टर नगेंद्र किसी भी कवि की आलोचना करते समय उसके निजी काव्य सौंदर्य की परख के साथ ही समूचे परिवेश की संदर्भगत विशेषताओं के परिप्रेक्ष्य में उसकी संपूर्ण जीवन दृष्टि पर विचार करना भी आवश्यक समझते हैं। डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक पद्धति में एक कला अध्यापक की स्पष्टता के साथ एक सहृदय संवेदनशील रसग्राही पाठक का रागात्मक संस्कार भी लक्षित होता है। इस कृति की संक्षिप्त भूमिका में पंत जी ने स्वीकार किया है कि श्री नगेंद्र जी स्वयं भी कवि हैं। अपने कवि हृदय के माधुर्य से मेरे काव्य को और भी सुंदर बनाकर वह पाठकों के सामने प्रस्तुत कर सके, इसमें मुझे संदेह नहीं। डॉक्टर नगेंद्र का यह हृदय माधुर्य उनकी शास्त्र निष्ठा के बावजूद आज भी बना हुआ है। डॉक्टर नगेंद्र की सबसे बड़ी विशेषता उनकी भावग्राहिता एवं सौंदर्य विधायक तत्वों की सूक्ष्म पहचान है। शास्त्र ज्ञान से उनकी यह विशेषता और भी परिष्कृत हो गई है। वे आलोच्य कृति की विशेषताओं को सहज ग्रहण कर लेते हैं और फिर एक एक विशेषता को लेकर सुधारण उनकी व्याख्या करने चलते हैं। आलोच्य कृति को सामने रखकर सिद्धांत सूत्रों को निर्दिष्ट करने तथा सिद्धांत सूत्रों की व्याख्या करते हुए उचित काव्य प्रसंगों एवं अवतरणों से उन्हें पुष्ट करने की कला में डॉक्टर नगेंद्र अद्वितीय हैं। अपनी आलोचनात्मक व्याख्याओं में भी भावानुभूति की रागात्मक परिधि से बाहर बहुत कम जाते हैं। यही कारण है कि वे एक ओर प्रगतिवाद के आधारभूत जीवन दर्शन मार्क्सवाद को नवीन और काफी स्वस्थ मानते हुए भी उसके आधार पर की जाने वाली साहित्य व्याख्या को अस्वीकार कर देते हैं और दूसरी ओर आध्यात्मिक चिंतन की सूक्ष्मता के कायल होने पर भी उसे काव्योपयोगी नहीं मानते। अपने निर्णयों को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए डॉक्टर नगेंद्र अन्य समर्थ आलोचकों की सम्मतियों का हवाला भी देते हैं और यथास्थान उनसे अपना मतभेद भी प्रकट करते हैं। उन्हें अपने निष्कर्षों पर पूर्ण विश्वास रहता है, इसलिए उनका दृढ़ स्वर दृढ़ और उनकी वाणी ओजस्विनी होती है। अब तक डॉक्टर नगेंद्र रविन्द्रनाथ टैगोर, आचार्य शुक्ल, मैत्रीषरण गुप्त, प्रसाद पंत, निराला, हाली, राहुल सांकृत्यायन, गुलेरी जी, महादेव वर्मा, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, सियाराम शरण गुप्त, दिनकर, बच्चन, अज्ञेय, गिरजा कुमार माथुर आदि अनेक कवियों और लेखकों की अनेक कृतियों की व्यवहारिक समीक्षाएं प्रस्तुत कर चुके हैं। इन समीक्षाओं में उनके विवेक, शास्त्र निष्ठा, संतुलित दृष्टि, स्पष्टवादिता, भावग्राहिता, कलात्मक बोध, मानसिक संस्कार, भाषा परिष्कार, रागात्मक चेतना तथा जीवन के प्रति एक स्वस्थ सौंदर्य दृष्टि का परिचय मिलता है। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रायः सभी आधुनिक काव्य प्रवृत्तियों का भी विश्लेषण किया है। ये विश्लेषण बहुत कुछ प्रमाण रूप में स्वीकृत हो चुके हैं। अतः सिद्धांत निरूपण और आलोच्य कृतियों की व्याख्या एवं विवेचना दोनों ही दृष्टियों से डॉक्टर नगेंद्र का कृतित्व विशेष गौरव का अधिकारी है। मूल्यांकन। डॉक्टर नगेंद्र ने अपने संपूर्ण कृतित्व से हिंदी काव्यशास्त्र को अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया है। आज भारत की किसी भी समृद्ध भाषा के काव्यशास्त्री हिंदी काव्यशास्त्र के प्रति उपेक्षा का भाव नहीं रह सकते। अंग्रेजी का सुधी पाठक अपने अध्ययन को पूर्ण बनाने के लिए हिंदी की ओर देख सकता है। डॉक्टर नगेंद्र ने असाध्य साधन किया है। उनके प्रयत्न से संस्कृत का संपूर्ण काव्यशास्त्रीय चिंतन हिंदी में अवतरित हो चुका है और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के मानक ग्रंथ हिंदी में अनुदित हो गए। अन्य भारतीय भाषाओं में इधर जो काव्य चिंतन हुआ है उसे भी डॉक्टर नगेंद्र ने विभिन्न भाषाओं के अधिकारी विद्वानों के सहयोग से सार रूप में हिंदी पाठकों के लिए सुलभ कर दिया है। इस समस्त सामग्री के आलोड़न के आधार पर एक सार्वभौम काव्यशास्त्र के विकास की संभावना की जा सकती है। यह कार्य भारत में ही संभव है क्योंकि एक ओर इसकी अपनी अत्यंत समृद्ध और प्रौण काव्य चिंतन की परंपरा है, दूसरी ओर यहाँ के समीक्षक ऐतिहासिक कारणों से पाश्चात्य काव्य चिंतन का प्रत्यक्ष एवं प्रमाणिक ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ है। भारतीय रस सिद्धांत की पूर्णता के प्रति डॉक्टर नगेंद्र का विश्वास अखंड है। यह विश्वास लगभग उसी कोटि का है जिस कोटि का आचार्य शुक्ल का। आचार्य शुक्ल ने रस सिद्धांत को व्याप्ति दी थी, उसी आध्यात्म के शीर्षक से नीचे उतारकर लोक हृदय में प्रतिष्ठित किया था। रस दृष्टि को लोक मंगल की नैतिक मर्यादा से संपृक्त किया था। डॉक्टर नगेंद्र रस को शुद्ध मानवीय अनुभूति के स्तर पर प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। आचार्य शुक्ल का लोक उन सहृदयों तक ही व्याप्त था जो राम के शील कष्ट के साथ उल्लसित हो सकते थे। इसमें संदेह नहीं कि राम का व्यक्तित्व आदर्शीकृत है। आज समस्या यह है कि सामान्य मानव, लघु मानव या खंडित मानव की सुख दुखात्मक अनुभूतियों के साथ सहानुभूति प्रकट की जाए। इस मानव के राग द्वेष, सुख दुख, हर्ष शोक, क्रोध घृणा के साथ तादात्म्य स्थापित करने के लिए आज के पाठक को अपनी तकात्मक परिधि का विस्तार करना होगा। मनोवैज्ञानिक दृष्टि शील चित्त को घृणा का विषय नहीं मानती। इस स्तर पर रस दृष्टि को लाना कठिन कार्य है। डॉक्टर नगेंद्र रस का संबंध शुद्ध मानवीय अनुभूति से जोड़कर उसे इसी स्तर पर प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। विरोध आचार्य शुक्ल का भी हुआ था और डॉक्टर नगेंद्र का भी हो रहा है। वस्तुतः आज हिंदी आलोचना के क्षेत्र में तीन प्रकार की प्रवृत्तियां कार्य कर रही हैं। एक ओर तो वे शास्त्रनिष्ठ पंडित हैं जो रस सिद्धांत को पूर्णतः प्राचीन मर्यादा के भीतर ही देखना परखना उचित समझते हैं। दूसरी ओर वे नवचिंतक या नवलेखक हैं जो किसी भी प्राचीन शास्त्रीय मर्यादा को स्वीकार नहीं करना चाहते। इन दोनों के बीच वे आलोचक आते हैं जो विकसित जीवन मूल्यों के साथ शास्त्रीय सीमाओं को भी विकसित करना चाहते हैं। इन्हें दोनों का ही विरोध सहन करना पड़ता है। प्राचीन शास्त्रीय मर्यादा के प्रति एकांत निष्ठा रखने वाले पंडितों को ऐसा लगता है कि वे मूल सिद्धांतों को विकृत कर रहे हैं और नए लेखक को लगता है कि ये व्यर्थ ही हमें शास्त्र के बंधन में बांध रहे हैं। डॉक्टर नगेंद्र की स्थिति मध्यवर्ती है। वे रस सिद्धांत को युगानुकूल व्याप्ति देना चाहते हैं, इसलिए पंडितों को उनसे शिकायत है कि नए लेखक उनसे क्षुब्ध हैं। कुछ भी हो, विरोध शक्तिशाली का ही होता है और डॉक्टर नगेंद्र आज हिंदी आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक समर्थ लेखक हैं। कविवर सुमित्रानंदन पंत के शब्दों में डॉक्टर नगेंद्र रस चेता तथा रस दृष्टा है। रस की अजस्र एवं निगूण आनंद साधना के लिए जिन बौद्धिक तथा हार्दिक गुणों, अभिप्सा, सूक्ष्म संवेदन क्षमता, अंतर्दृष्टि, संकल्प शक्ति, सत्य प्रतीति तथा निश्चल निष्ठा आदि की आवश्यकता होती है, वे डॉक्टर नगेंद्र में प्रचुर मात्रा में हैं।